पांचवा और फिर इसके बाद दो और पॉइंट्स है हमारे पास, मुहतसिबा मुकर्रर करने, एक औरत के बाजार जाने पर क्यास और हकीकत। औरत की बाजार में बहसियत मुहतसिबा तकर्री पर इस्तदलाल करते हुए बाज़ फाजिल मुआसरीन ने यह भी लिखा कि जब औरत का खरीदो फरोख की खातिर बाजार जाना दुरुस्त है तो बहसियत मुहतसिबा इसको तयन करना क्यों ना दुरुस्त और गलत होगा। यानी कि जब औरत बाजार जा सकती है तो फिर वो दूसरों को बुराई से क्यों नहीं रोक सकती। तो इसका जवाब ये देते हैं कि शरीयत इस्लामिया की रूह से औरत का असल ठिकाना इसका घर है। इसका घर से निकलना एक इस्तस्ना, इस्तस्ना किसको कहते हैं, एग्जेम्प्टेड, चंद खास हालात में, हर हाल में नहीं लेकिन विद कंडीशंस, आप कह दें कि ये काम कर सकते हैं बट शराइत के साथ। जिसके असूल की खातिर इस्लामी आदाब की पाबंदी खवातीन पर लाजिम है और इन आदाब की पाबंदी खवातीन की बहुत थोड़ी तादाद करती है। यानी कौन सी औरतें हैं कि वो पीछे हमने नौ पढ़ी हैं ना पाबंदियाँ, आप लोगों को तो याद होनी चाहिए कि औरत घर से निकले तो उसके नौ आदाब हैं। ये कोई सीखना चाहे तो सीखे ना, फिर निकलें बाहर, फिर मज़ा भी आए, फिर आपको एहसास भी होगा और दूसरों को भी लगेगा कि निकलना है तो ऐसे निकलें। आज हम औरतें अगर सिर्फ शरई हदूद में रहते हुए शॉपिंग करनी शुरू कर दें, बिलीव में हमारी ये सारी बाज़ारों की हालत ठीक हो जाए। और ये औरतों को देख देख कर, उनकी अदाएँ देख देख कर, और जो उनके साथ फिर दुकानदारों का बात करने का अंदाज है, और जो उसमें वो क्लोजनेस होती है, घबराहट होने लगती है। कभी ही कोई अपने शौहर से इतने लाड से बात करता होगा जितने लाड से ज्यूलर से बात करती है। नहीं मैं तो ये लूँगी, मैं तो आपसे बनवाऊँगी, मैं तो ऐसे ही लूँगी, मुझे तो पहनना है, सज रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, देखें ज़रा मेरी तरफ देखें। ये कोई बातें करने वाली, ये तो चीप बातें हैं, ये तो उस दौर की लौंडियाँ भी नहीं ऐसा करती होंगी जो आज की आज़ाद औरत। देखने का साथ गैर मर्द है ना, आपका उसका खून का रिश्ता, ना भाई का रिश्ता, ना बहन का, ख़ानदान का भी वो मर्द नहीं है। एक पता नहीं वो किस शहर किस तबके से रोज़ उठ के आता है, पता नहीं वो कैसे किरदार का मर्द है, हमें तो नहीं बताना, अच्छे ही होंगे, लेकिन आप उसके साथ जाके इतने बेतकल्लुफ मूड में, और हम कहते हैं नहीं एटिकेट्स अच्छे होने चाहिए, दिखाइए ना, कीजिए ना, आप इतने लोच से नरमी से बात करके महजब बन जाते हैं लेकिन अगले के दिल में कुछ भी ख्याल आ सकता है। दो टोक क्लियर कट बेतकल्लुफी से पाक गुफ्तगू होनी चाहिए जब एक औरत जाके मर्द से डील करती, और ये असूल हर जगह है, आप कहीं भी जाके इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें ये अदब है। अब आप बताइए कि जब ये सारे अदाब पूरे करके कोई औरत निकलती है तो उसके लिए फिर इसके बाद तो कोई और गुंजाइश ही नहीं रहती। औरत के लिए घर से निकलने की इस्तिस्नाई इजाज़त पर इसका बहसियत मुहतसिबा बाजार में मुतय्यन करने का क्यास दुरुस्त नहीं। एहतसाब का तकाजा है कि मनसब एहतसाब पर फायस खातून घंटों बाजार में घूमे फिरे। खवातीन को इस तरह घंटों बाजारों में रखना बजाय खुद एक बुराई है बल्कि बुराई और शर और फसाद का मंबा मावा है, और अहले इस्लाम की जिम्मेदारी है कि इसके खात्मे के लिए मकदूर भर कोशिशें करें। यानी ये बात तो आपको मुझे भी समझ आती है ना कि अगर कोई औरत कसरत से बाजार जाने लग जाए, रोज़ जाने लगे, तो ख़राबी बढ़ेगी ना। एक तो चले अपनी नुमाइश और अपनी इज्जत, दूसरा पैसे का कितना ज़िया है। हर दिन एक चीज़ ले आएगी और दो चीज़ें वहाँ सोच के छोड़ आएगी, जो कल लेने जाएगी, कल वो लेने जाएगी तो एक और छोड़ आएगी, तो वो परेशान कितनी रहेगी। और सच बताएं, आपका मुझे नहीं पता लेकिन मुझे तो अब तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इस मुसीबत से निकाल दिया, लेकिन जब कभी बाजार जाते थे आके सर में दर्द ज़रूर होती थी, मैं साथ ही सोचती थी कि ये मेरा आज के गुनाह का कफारा अल्लाह ने ले लिया, पक्की बात है सर में दर्द होती थी। जिसको बाजार जाना, हमारे उर्फ में कहते हैं ना जल्दी जल्दी काम कर लो आज बाजार जाना, बैग तैयार हो रहे हैं, थैले बन रहे हैं, और कई लोग नमाजें हम साथ ना पढ़ लें, दो बाजार में जाना ना तो असर साथ ही पढ़ लें, जिस एहतमाम से, और चार पाँच घंटे की बात। और सच्ची बात है, माइंड ना करें अगर किसी का ऐसा कोई अमल हो। मैं अभी चंद दिन पहले कहीं से गुजरी, मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़नी थी तो सार ड्राइवर भी था, तो मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे इधर ही उतार दें, एक छोटा सा काम था तो मैं वो उसी एक दुकान को दे दूँ, तो आप नमाज़ सीखते थे, मस्जिद में जगह नहीं थी, वहाँ नहीं जा सकती थी। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मैं वहाँ से गुजर के जहाँ मुझे काम था मैं गई, तो वो बाज़ार का रास्ता था, खुली सड़क है, चौक है, और औरतें आलू छोले खा रही हैं और वहाँ वो टिक्के कबाब बन रहे हैं, और खुले रोड पे अपनी माएँ बहनें हमारी सिस्टर्स चारों तरफ लोग बैठे और वो पार्टी मूड में खाने खा रही हैं। मैं सोचूं कभी हम भी खाते थे, यानी कभी मुझे याद है कि हम भी खाते थे, कि खुले हम नहीं, बंद कैबिनों में पर्दे में पीछे औरतों का हिस्सा है, जाओ आलू छोले ले आओ, चने चाट ले आओ, तब शायद वो भी बुरा नहीं लग, क्योंकि जब चार घंटे बाजार में रहेंगे तो बीपी तो लो होना ही है ना। लेकिन ये अब तो खुले चौर में आपकी लिबर्टी में जाके देखें, मेन रोड पर औरतें बैठी दोस्तें सहेलियाँ अपने खाने खा रही होती हैं और चारों तरफ लोग फिर हैं। मुझे लगे इनसे ज़्यादा ना समझ दुनिया में कोई नहीं होगा, और किसी के साथ उनका मर्द नहीं था क्योंकि अक्सर हमारे कल्चर में औरतें औरतें ही मिलकर शॉपिंग करती हैं। मर्दों में इतना सब्र है कि आपकी लिबर्टी में 2 घंटे गुजारे हैं, वो तो आपको भी ना जाने दे नेक्स्ट टाइम। बिलीव मी कि मर्द में इतना सब्र नहीं है जितना सब्र हम औरतें बाजारों में जाके कर लेती हैं। फिर छठा सेकंड लास्ट पॉइंट है कि बाजारे निस्वा यानी औरतों के बाजार में मुख्तसिब मर्द का बायस फसाद होने का दावा, यानी वो कहते हैं कि अगर सिर्फ औरतों का बाजार है तो वहाँ का मर्द को इस काम पे जिम्मेदार बना दिया गया तो बड़े फितने होंगे। इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं। बस फाजिल मुआसरीन ने यह भी तहरीर किया कि बाजारों में औरतों के मखसूस हिस्सों पर मर्दों की तकर्री बायस फसाद होगी। इस इस्तदलाल की हकीकत बयान करने से पहले ये दरियाफ्त करना शायद मुनासिब हो कि बाजारों में औरतों के मखसूस हिस्सों से क्या मुराद है। कैसे मुराद वो हिस्से हैं जहाँ बेचने और खरीदने वाली सब औरतें हों, या वो हिस्से मकसूद हैं जहाँ बेचने वाले मर्द और खरीदार औरतें हों। इसी कातिब ने 5 सत्रों बाद में जो कुछ तहरीर के से मालूम होता है कि इनकी मुराद वो बाजार है जहाँ बेचने वाले मर्द और ख़रीदने वाली औरतें हों। उन्होंने लिखा कि हम समझते हैं कि औरतों के बाजार में इख्तसाब की जिम्मेदारी को बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम देने वाली खातून होती है, क्योंकि वो खवातीन से लेन देन करने वाले ताजरों की सीरत व अमानत की खूब अच्छी तरह छान पटक और जांच पड़ताल कर सकती है। इस मुकाम पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर इस किस्म के बाजार में मनसब एहतसाब पर फायस मर्द का वजूद बायस फसाद है, तो दुकानदार मर्दों का वजूद जिनमें नेक और बुरे दोनों किस्म के लोग होते हैं बायस फसाद क्यों नहीं? अगर इस किस्म के बाजार में मुख्तसिब मर्द की वजह से औरतों और मर्दों में इख्तलात यानी मिक्सिंग होती है, तो क्या मर्द दुकानदारों की वजह से मर्दों और औरतों का इख्तलात नहीं हो सकता? क्या मुख्तसिबा की तकर्री से इस किस्म के बाजारों में इख्तलात का खात्मा हो जाएगा? क्या मुख्तसिबा को तायुन करने के साथ दुकानदार मर्दों को इस बाजार से बाहर निकाल दिया जाएगा? यानी सारी बातों का खुलासा कि ऐसा ना हुआ ना हो सकता है। आखिरी बात है 7वां पॉइंट के, कि औरतों को मामलात सौंपने वाली हदीस की खिलाफत के साथ तफसीस और इसकी ज़ात। बस लोगों ने नबी सल्लम के इस फरमान के लई युफलिख कौमन वल्लो अमरहुम इमरातुन, औरत को अपना मामला सौंपने वाली कौम हरगिज फलाह नहीं पाएगी, मनसब खिलाफत के साथ खास कर दी, यानी ये बात कि औरत किसी मुल्क की हुक्मरान नहीं बन सकती। यह हदीस है, सच हदीस है। बस कहते हैं कि ये खिलाफत के साथ इसका ताल्लुक है। हमारी राय में इस हदीस का ताल्लुक मनसब खिलाफत से है। एक और साहब ने तहरीर किया, इस हदीस शरीफ के मानी और बाजार में औरत को मुख्तसिबा मुकर्रर करने के मफहूम में बहुत फ़र्क है। इन हजरात का ये कहना दुरुस्त नहीं। हदीस में अल्फाज आम है, जहाँ भी लोग अपने मामलात औरत के सुपुर्द करेंगे फलाह व सआदत से महरूमी इनका मुकद्दर बन जाएगी। जैसा कि मालूम है कि अल्लाह के नबी ने अहले फारस के किसरा की बेटी को हुक्मरान बनाने के मौके पर यह हदीस इरशाद की, लेकिन इस पस मंज़र के पेश नज़र इसको मनसब खिलाफत के साथ मखसूस करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि आम अकीदे अलेब्रा तो बियमूम लफ्ज़ ला बिखसूस सबब, लफ्ज़ के अमूम को पेश नज़र रखा जाता है, ख़ास सबब को पेश नज़र नहीं रखा जाता। तो खुलासा क्या निकला कि हमारी सारी गुफ्तगू में औरत को बाजार में मुख्तसिबा मुकर्रर करने की ममानियत का ताल्लुक, पहली बात क्या है कि जहाँ औरतें और मर्द दोनों होंगे वहाँ औरत को नहीं रखा जाएगा। दूसरी बात है, अगर बाजार ऐसा हो जहाँ बेचने वाली खरीदने वाली सब औरतें हों तो औरत ही ऐसा काम करेगी, कोई हरज नहीं। जैसे आप देखिए हरम में आप जाते हैं, मक्का में मदीना में, तो औरतों के हिस्से में औरतें मुकर्रर की होती हैं, उन्होंने जो औरतों को टैकल करती हैं, उनको बिठाती हैं। ख़ास तौर पर मस्जिद नबी में तो बहुत अच्छे तरीके से ख़वातीन की तालीम का भी इंतज़ाम होता है, सुबह फजर से इशराक तक आप देखिए कि वहाँ मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में होते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह तो हो सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। किसी मर्द की बहसियत मुख्तसिब वहाँ तकर्री ना की जाए, इसी तरह से तालीमी इज्तमाही और दीगर इदारे जहाँ सिर्फ ख़वातीन हो वहाँ भी ख़वातीन ही को मुतय्यन किया जाएगा। बस औरतों का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई सिर्फ औरतों ही का सेंटर है तो वहाँ औरतें ही होंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये बात तो अक्ल में भी समझ आती है। तो बहरहाल यहाँ पे ये बात पूरी हुई। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें सबको इन चीज़ों पे गौर फिक्र करने का मौका दे। सारी बुक पढ़ने के बाद इस टॉपिक के बाद जो खुलासा जहन में आता है हम उसको कर लेते हैं। तो पहली बात जो हमने इस टॉपिक में कवर की वो क्या थी कि मर्दों की तरह औरतों की भी जिम्मेदारी है कि अपने इर्द गिर्द होती भी बुराई जो है उसको देखकर उस पर लोगों को रोक टोक रखें, अच्छे तरीके से बात करें, और इस पर हम सबको वाकई संजीदा होना चाहिए। हमारी मासियाँ, हमारी मेड्स, हमारे ड्राइवर, हमारे माली बाबा, हमारे घर के अंदर रहने वाले लोग जो भी हैं हम उसके ज़िम्मेदार हैं। देखिए मसलन आप कहते हैं ना कि 6 नौकर हैं घर में, तो फिर 6 की जिम्मेदारी आप पे। आप कहते हैं 6 की ये जिम्मेदारी है कि आप 2-2 करके 12 रोटियां पकानी पड़ेंगी, इन 6 को खाना देना पड़ेगा, फिर इनको गर्मी सर्दी शब रात जोड़ा देना पड़ेगा, वो तो है ही है। बट इन छः की नमाजें, इन छः का अखलाक, इन छः के अंदर को बुराई नहीं, ये भी आपकी मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि हदीस है, कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिहा। हर बंदा जो भी उसके अंडर आ जाता है ना, वो उसके बारे में पूछा जाएगा। वमरात औरत के लफ्ज़ बोले कि औरत अपने घर के सारे लोगों की या उसके मामलात की जो है वो रहनुमा होगी। तो जिम्मेदारी बढ़ेगी ना। आपने घरों में मेड्स रखी है ना, आप उनको नमाज़ पढ़ाएं, आप अपने काम कराते रहें, वो नमाज़ छोड़ दें, ड्राइवरों को इधर से उधर भगाते रहते हैं, उन बेचारों की नमाज नहीं चली जाती है, ये नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे घरों में लोग रखते हैं, वो तो अपने मुलाजमों को खाने पानी पीने का बहुत ज़्यादा इख्तमाम करते हैं, उनको भी अपने ही जैसा खिलाते हैं, तो फिर उनकी भी नमाज़ उतनी अहम है। अगर आप बाहर या कपड़े पहनती हैं, तो अपनी मेड को भी घर से निकलते वक्त अगर बाहर आपके साथ जा रही है, चादर उड़ाइए, अबाया पहनाइए। अब मेड से मैंने बात शुरू की है, तो आप इसके बाद हर एक को इस पर ले आइए। क्या आपकी बेटियां क्या पहनती हैं, आपकी बेटियां बहू बेटियां घर से किस हाल हुली में जानती है, क्या आपका इसमें कोई कंसर्न नहीं है? है क्यों? वो आपकी बहू है, वो आपकी बेटी है, वो आपकी बहन है, वो आपकी माँ है, आपके जिम्मे है ना। तो इन बातों में इंसान को बहुत क्लियर होना चाहिए। किसी भी दौर में लोगों ने इस बात को एकदम नहीं पसंद किया। इसको सुनने के लिए जो दिल तैयार होता है ना, वो कुरान से होता है। मैं अक्सर ये मिसाल देती हूँ, आपको दोबारा दे देती हूँ, कि हमारे बच्चे हमारी बेटियाँ हमारी नहीं सुनेंगे, वो अपने दिल की सुनेंगे, तो उनके दिल को बदल दें। जैसे मैंने उस दिन भी एक जगह मिसाल दी थी कि जैसे आपका ये घर है ना, आपने एक मेड रखी है, तो आपकी नेबर आए आपकी मेड को बुलाए और कहे चलो मेरे घर में झाड़ू दो, शायद एक दिन दे दे सोच में कि शायद बाजी मुझे कोई 100 का नोट दे देगी या मरवत में ही दे दे। दो चार दफ़ा अगर दूसरे की मेड को आप बुलाएंगे, मेड नहीं आएगी। आप किसी की मेड से काम करवाना है ना, तो आप उसको कहेंगे कि अपनी मेड को कहना याद है ये कर दे, आपकी सुन के आपकी मेड आपकी दोस्त के घर काम कराएगी। ये बात तो समझ आ गई ना। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो दिल है ना, जिस्म में दिल, ये एक किस्म का ऐसे है जैसे ओनर है, जैसे आप हैं। और ये जो आंखें कान हाथ अज़ा जिनकी वजह से अक्सर हम गुनाहगार होते हैं, ये गुलाम है दिल के। दिल हुक्म देता है तो आंखें ठीक चीज़ें देखती हैं, दिल हुक्म देता है तो आंखें बुरी चीज़ देखती हैं, दिल कानों को कहता है गलत सुनो तो गलत सुनता है। अब समझ आ गई ना। अब आप अपने बच्चे को कहते हैं टीवी बंद कर दो, बेटी को कहते हैं गाने नहीं सुनो, मिसाल है। उसकी आंखें उसके दिल की मेड है, आपकी नहीं। समझ आ रही है? उलझी हुई बात तो नहीं है ना। आपने करना है ना अगर अपनी बेटी को कि वो गलत ना देखे, गलत ना सुने, गलत ना बोले, तो आप उसके दिल को कहें, इसको बोलो, अपनी औलाद के दिल को बोलिए कि वो गलत ना सुने देखे। तो उसके दिल को बोलने का तरीका क्या है? कुरान। सीधी सी बात है, हजरत उमर कहते थे अपनी औलाद को कुरान सिखा दो, कुरान उनको सब कुछ सिखा देगा। हम सारा दिन बोलते हैं, कई माओं से मैंने ये बात सुनी है, सारा दिन बोलती हूँ, ये तो गलती है आपकी। सारा दिन आप बोलेंगे तो असर कहाँ रहेगा? गलत तरीके से तबलीग करते हैं। जिन चीज़ों पे स्टैंड लेना चाहिए उस पे नहीं लेते, और स्टैंड लेने के बाद ज़रा खुद पे भी तो जब्त करना ही पड़ता है ना। कह दिए, मिसाल है बच्चा फजर नहीं पढ़ता, एक असूल बैठ के प्यार से नरमी से मोहब्बत से बता दें, जिसने नहीं पढ़नी फजर वक्त पे, उसका नाश्ता मैंने नहीं बनाना। अब आप कहते भूखे जाएंगे, खुद बना ले, आता उनको भी बनाना, मैंने नहीं बना के देना। अब आपको पता कि ये फजर पे नहीं उठा बच्चा या बच्ची, अब आप ना पीछे फिरे, भूखा ना जाना, खा लो मेरा ये है वो है, फिर उसको आप बिल्कुल ओवरलुक करते हैं। एक इंसान का बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, यकीन करें हम खुद ढीठ बना देते हैं लोगों को। और उसको पता है अम्मा ने कह दिया मैंने तुमसे बात नहीं करनी, और ठीक 5 मिनट बाद अम्मा बात कर रही होती है, खाना नहीं दूंगी, और 5 मिनट अम्मा पूछती है क्या खाओगे, भूखे ना जाना, मेरे दिल को कुछ होता है, मेरी तो ये है, तुम तो मेरी औलाद हो। नहीं, फिर आप भी रो लें, कोई नहीं भूखा गया, जाने दे भूखा, कल फजर पे उसको इसकी वजह समझ आएगी। हमें स्टैंड नहीं लेना था। मैं कहती हूँ मोहब्बत इतनी बड़ी ताकत है, मोहब्बत फातह आलम है, आपने सुना होगा। मैं सोचती हूँ अक्सर, और मैं अक्सर अपने साथियों में देखती भी हूँ, वो अपनी मोहब्बत की जोर पे अपने भाई बहनों से तबलीग देते हैं। भाई नमाज नहीं पढ़ते तो बहन है तो भाई को मैसेज कर रही है, जिसमें रो रही है, दो रही है, प्यार कर रही है, मेरा भाई तुम्हें पता है इतना अच्छा मेरे भाई ये है, पर तुम नमाज़ पढ़ा करो, और तुम नमाज़ पढ़ोगे तो मैं ये करूँगी, फिर उनको लालच देना। यानी बड़े बहन भाइयों की बात कर रही हूँ, कि बेबीज़ की नहीं बात कर रही। तो वो बहन का प्यार इतना होता है उसमें कि भाई कहता है अब इसको मैं क्या मना करूं, चलो मैं कोशिश करूंगा। इस तरह सिस्टर्स हैं वो, ये व्हाट्सएप की क्लासेस हैं या ऐप्स हैं, मैसेज छोटे छोटे मैसेज क्लिप्स वो भेजती हैं अपने घर वालों को और साथ कहती हैं मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की वजह से कह रही हूँ इसको ज़रूर सुनना। पहले भेजती थी लोग नहीं सुनते थे, अब कहती हैं सुनने लग गए। हम प्यारों को ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं कर सकते। तो ये जो मोहब्बतों की बात है इसको मैं कहती हूँ अपने लफ्ज़ों में कि इमोशनल प्रीचिंग। लोग तो कहते हैं ना इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं आप, मतलब जैसे माँ कहती थी कभी कि मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, अब तो माँ ने दूध ही छोड़ दिया तो वो जुमला भी बदल गया है। लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं है, इमोशनली दूसरे को प्रीच करना है। मैं आपके साथ जन्नत में जाना चाहती हूँ, हस्बैंड को बोले आप नमाज नहीं पढ़ेंगे मैं पढ़ती हूँ, हम दोनों एक साथ कैसे होंगे? प्यार से कहिए मैंने आपके बगैर नहीं जन्नत में जाना, उठिए चलें दोनों पढ़ते हैं, चलिए आप जमात कराएं मैं आपके साथ पढ़ती, चलें नमाज पढ़ते हैं मिलके, फिर मिलके चाय पियेंगे। कितने घरों में हस्बैंड वाइफ की दोस्ती है, ज़रूरतों के लिए लगे हुए एक दूसरे के साथ, या रिस्पेक्ट है या डर है या फिर सारे दिन की लड़ाई है या बस बेजारी है। वो जो एक दोस्त दोस्त का ताल्लुक होता है वो हमें बहुत कम घरों में दिखता है, और जिन घरों में है मैंने अपनी साथियों में देखा है जो भी कुरान से हाथ जुड़ती हैं क्लासेस लेती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है, और घरों में पहले से वो माहौल नहीं होता, जब वो चेंज होती है ना तो जिनका अपने हस्बैंड के साथ बहुत स्ट्रांग रिलेशन होता है ना पहले ही बेतकल्फी का और मोहब्बत का, बड़ी जल्दी उनके हस्बैंड उनके साथ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोस्ती होती है ना, शेयर करती हैं बातें, वो सुनती हैं तो उनके कान में भी पड़ जाता है। लेकिन जहाँ पहले से कोई टसल चल रही हो, हर वक्त वैसी तलाक की धमकी है, तो फिर हो सकता है कि आप ज़रा सी ऊंची नीची बात करें तो वो कि आज दे ही दूंगा जो 10 साल से नहीं दे चुका, समझ आ रही है ना? तो बहरहाल ये चीज़ हमने पहली सीखी। दूसरी बात हमने इस पूरे टॉपिक में क्या सीखी है कि बहुत से बेटों बापों भाइयों और शौहरों की निगाहों में अपनी अपनी माओं बेटियों बहनों और बीवियों के खास मुकाम होता है। मुसलमान खवातीन को चाहिए कि अपनी इस हैसियत को नेकी का हुक्म मनवाने और बुराई से रोकने में इस्तेमाल करें। यही बात मैंने आपसे की है, बिलीव मी, आप मेरी इस बात पे थोड़े से कान धरिएगा। जो बात बेटी अपने बाप से मनवा सकती है ना, उस मर्द से वो काम कोई दुनिया की ताकत नहीं ले सकती, क्योंकि अक्सर बाप अपनी बेटी की बात नहीं मोड़ते। बात समझ रहे? बेटियों से तबलीग करवाएं बापों को, बेटों से तबलीग करवाएं बापों को, क्योंकि बाप अपनी बेटी की बात नहीं टालता। अब्बू नमाज पढ़े, और लाड अब्बू के अब्बू ने कहते मैंने अपनी लाडली की बात कभी छोड़ी नहीं, तो फिर वो लाडली के कहने पे नमाज भी पढ़ लेंगे। आप देखिए ना, सिगरेट पीते हैं बस मर्द, बीवी की नहीं मानते, किसी की नहीं मानते, बेटी के की मान जाएंगे। और एक बात याद रखें, अल्लाह ने औरत को वो खूबी दी है ना जो मर्दों को नहीं दी, औरत के अंदर एक अट्रैक्शन है, औरत अपनी बात जज्बात के जरिए मनवा ही लेती, क्योंकि औरत इमोशनल जो होती है उसने बात करने में पहले तो रोना है, इतने में वो मर्द का दिल तो पसीज जाता है, चाहे वो बाप है या भाई या शौहर है कोई भी है। औरत के आंसुओं के आगे दुनिया की बहुत कम चीज़ें ठहरती हैं, इसके सैलाब में बड़े बड़े गुस्से और बड़ी बड़ी रंजिशें भी जाती हैं। तो आपको लगता है घर में माहौल है, आप इमेजिन करें ना, घर का कोई एक फर्द नमाज नहीं पढ़ता, अब वो कोई भी है, आज से आप उसको टारगेट बनाएं, आप कहते हैं उठो नमाज पढ़ें, आप मुनाफिक हैं, आप जन्नत में जाएंगे, आप काफिर हैं, आपका तो इस्लाम ख़त्म हो गया, हमारा तो निकाह हराम है, वो अगले दिन कहेंगे तुम मौलवी बन गई हो, खबरदार ना जाना। हम ये करते हैं, हम किसी दर्स में जाते हैं ना तो वहाँ से इस तरह की चीज़ें जो हमारे घर वालों में होती है ना वो पकड़ के लेके आते हैं, और जाके उन पर पूरी की पूरी उंडेल देते हैं, तो वो अगले दिन आपको फिर आने नहीं देते। बात समझ रहे? आप और मैं सुन रहे हैं ना, मुझे आपको इस पर गौर करना है। मैं और आप अगर अपने लिए सुन के यहाँ से तब्दील होके उठ गए ना, हमारा अमल दूसरों को बताएगा अपनी तब्दील। आप तहज्जुद पढ़ते हैं, आप लाइट खोल दें, थोड़ा थोड़ी खटक करें, एसी बंद कर दें, सर्दियाँ तो ईट बंद कर दें, माहौल ही ऐसा बना दें कि आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद ही मामलो, आप मज़े का खाना पकाना शुरू कर दें, उसकी खुशबू जिसकी बहुत फैले, और वो जो खाना उनको पसंद भी हो, किसी को चाय पसंद है तो आप उठ के बजाय इसके ये कह के उठिए नमाज पढ़ें, मर्दों को गुस्सा आता है, आप एक जुमला प्यार से बोलें आइए चाय पीते हैं, तो कहेंगे बिस्कुट भी ले आओ, है ना? हमेशा अगले को रखे। किसी का तजर्बा सुनना बड़ा अच्छा लगा मुझे, मेरा ख्याल है कि वो खुद को तबलीगी जमात से रिलेट करते हैं, तो कोई वाक्या सुना रहा था कहीं भी कि मैंने कभी किसी को फजर के लिए किसी को ऐसे उठाते नहीं देखा, तो वो अपनी कहानी कैसे सुना रहे थे कि कहीं गए और वहाँ कुछ लोग आए हुए थे, तो उसके बाद हम सारे मिलके सो गए, तो जब सुबह के वक्त जिस बात से मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि मेरे पाँव में कोई बड़ी नरमी से गुदगुदी हो रहा है, मतलब मैं ज़ाहिर है आपके जिस्म को कोई छेड़े टच करे तो आपकी आंख तो खुलती है ना, तो कहते हैं कैसे ना मेरे पाँव को मेरी टांगों को ऐसे सहला रहा है कोई। तो एकदम मैं घबरा के उठा तो देखा तो वो जो लोग तबलीग के लिए निकले हुए थे उनमें से एक मर्द इनके पाँव दबा रहा था, और जब इनकी आँख खुल गई टांगे दबाने से तो कहा कि चले आइए नमाज ना पढ़ लें। अब आप सोचिए एक बंदा आपके पाँव दबा रहा है, अब आप ज़रा आज सुबह फजर में अपने मियाँ के पाँव तो दबाएं, उन्होंने टांग भी आगे कर देनी है ये भी दबाओ। लेकिन देखिए प्यार से आप दिलों के शीशों को तोड़ के तबलीग नहीं कर सकते। ये शाउट करके जो कानों से ऊपर के छत से ऊपर की आवाज़ जाती है वल्लाह ही लोग नहीं सुनते, मैं भी नहीं सुनूंगी मुझे कोई ऐसे उठाएगा तो मैं नहीं उठूंगी। लेकिन हम अपनी स्ट्रेटेजी 20 साल में भी नहीं बदलते, ये चीखते हैं 20 साल हो गए इनको उठाते हुए, ये इनको आदत नहीं पड़ी, तो इसका कि आप ये गोली बदलें। देखिए एक डॉक्टर 20 साल मरीज को एक ही गोली दे तो उसकी तो इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ गई होगी, उसको अब उसका असर होना भी कोई नहीं। फितरत को झंझोड़ें ना कि उनकी अना को जोड़ें, किसी के ज़मीर को जगाएं, उसको गिल्ट फील हो जाए ना कि आप उसकी अना जगा दें कि अब फजर हो गई, अब सुबह हो गई, अब सूरज पड़े हुए सोने, अब सोते रहो, अब उठो, इतना जो आप चीख रहे हैं तो वो उसकी अना उठ जाएगी, वो अना एक सोया हुआ शेर है उसको सोए ही रहने दें। लोगों की गैरत ना उठाएं, उनका ज़मीर जगवाएं, फिर आप देखेंगे कि उनके अंदर इस चीज़ का एहसास होगा। हम लोगों को बार बार ढीठ भी कर देते हैं, तो ये काम इतना सेंसिटिव काम है, जैसे डॉक्टर है दो मुख्तलिफ डॉक्टर है, किसी के हाथ का इंजेक्शन कितना सख्त होता है और किसी का कितना नरम होता है, तो ये इंजेक्शन ही लगते हैं लोगों को, इसके लिए थोड़ी सी नरमी और सहूलत देनी चाहिए। और अपने ऊपर लेके सोचें ना, कल मैं क्या थी, मुझे किस चीज़ ने माइल किया। फिर इसी तरह से आप देखिए तीसरी चीज़ हमने इस टॉपिक में पढ़ी है कि माजी की खवातीन क़ुरून अूला, जो माजी गुजर गया उस दौर में औरतों ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था, वो अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख कर चुप नहीं रहती थी। और इसमें हमने 86 वाक़यात पढ़े हैं इस टॉपिक के अंदर कि क्या तरीके थे जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की इन चीज़ों को रखा। फिर चौथी चीज़ हमने इसमें देखी कि मुसलमान ख़वातीन ने दीन के नाम पर एहतसाब को किसी ख़ास गोशे तक नहीं रखा, हर मौके पे हर मौजू पे, अकीदे में बुराई देखी तो वो देखी, इबादात में देखी, अखलाक में देखी, आदतों में देखी। फिर इसके बाद हमने देखी एक और चीज़ भी इसमें देखी थी, और वो क्या थी कि ये बहुत अहम बात है, यही बात असल में मैं भी इस वक्त आपको समझा रही हूँ कि किसी को भी अच्छी बात का हुक्म दें या बुराई से रोकें हम तो बुनियाद कुरान और सुन्नत, ये लाजमी है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। फिर इस बुक में हमने एक और टॉपिक देखा कि अपने हालात और इस्तेतात के मुताबिक दर्जे होते हैं, नेकी का हुक्म देने के, बुराई से रोकना, कभी प्यार से बात करनी पड़ती है, कभी दो टोक बात करनी पड़ती है, कभी संजीदगी से बात करनी पड़ती है, कभी धमकी भी देनी पड़ती है, तो वक्त के लिहाज से सारे ही तरीके इस्तेमाल करने हैं। हर जगह मीठी गोली भी नहीं चलती और हर जगह कड़वा इंजेक्शन भी नहीं चलता। फिर हमने इसमें ये देखा था कि कितने ऐसे लोग हैं जो ख्वातीन के रोकने से बुराई से रोके, यानी औरतों ने उनकी बीवियों ने या उनकी बेटियों ने बहनों ने उनको बुराई से रोका तो वो रुक गए, शायद हमारे बहन भाइयों की हिदायत भी अल्लाह ने हमारे साथ जोड़ी हो सकता है कि कोई नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह ने मेरा अजर रखा हुआ है कि मैं कहूँ तो वो पढ़े तो खुश हो कि ये मेरे नाम की नेकी, इसको मैंने हिदायत पे दिलवाना है अल्लाह से, तो कोशिश करनी चाहिए। फिर इसके बाद आखिरी चीज़ों में हमने ये देखा था कि औरतों के लिए बाहर जाकर तबलीग के नाम पर इस तरह से मर्दों में घुसना घुसाना ये पसंदीदा नहीं है। और फिर हमने एक ये भी टॉपिक बहुत डिटेल से देखा था कि जिन सोसाइटीज़ में औरतें घरों से ज़्यादा निकली बाहर वहाँ क्या फसाद हुआ, उसमें हमने कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी कि वेस्ट में औरत की इज्जत को कितना ज़्यादा ख़तरा है। और आज जो हमने एंड पर टॉपिक पढ़ा है कि औरत को एक प्रोफेशन के तौर पर ये काम नहीं दिया गया कि वो बाहर जाके रोके, हाँ जहाँ औरतें हैं वहाँ औरतें जाएँ, जहाँ मर्द हैं वहाँ मर्द जाएँ। और आपको मुझे बस आज अल्लाह ताला से यही दुआ करनी है कि अल्लाह हमें इस काम का हिस्सेदार बना ले। आप में से वो साथी जो कुरान की क्लास में आते हैं बकायदा, और मुझे उम्मीद है कि आप सब में से बहुत सारे लोग इनके साथ ज्वाइन होंगे, एक आयत कुरान की याद रख लें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा नंबर एक, और तुम्हें साबित कदमी अता करेगा। ये जो हमें घर के कामों ने रोका हुआ है ना, हम करेंगे तो ऐसे ही होंगे। मैं खाना पकाऊँ ना तो मैं तो कभी ना पूरा पका सकूँ, वल्लाही। मैं अल्लाह के काम करूँगी ना तो मेरा कच्चा पक्का भी मज़े का बनेगा, थोड़े वक्त में भी बरकत हो जाएगी। आज उम्मत मुस्लिमा की जिल्लत और रुसवाई और तबाही की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अपने कामों को अपने हाथ में ले लिया, और जो काम अल्लाह ने हमें दिया था, कुन तुम खैर उम्मत अखरजत लिन्नास तामुरूना बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, वो हमने कह दिया अल्लाह खुद ही कर लेगा, तो अपना हिस्सा डालें। जब हम खुद कुरान से इल्म से जुड़ते हैं ना, फिर ही तलब और तड़प पैदा होती है। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे इर्द गिर्द वालों को हमारा मुआविन बना दें। हज़रत मूसा ने दुआ की थी कि रब्बिश्राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु कौली व जअलनी वज़ीरा मिन अहली। पहली दुआ तो सभी को आती है कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरे ज़ुबान की गिरहें खोल दें, ताकि ये मेरी बात को समझ सकें और मेरे घर वालों में मोमिन बना दें। ये दुआ आज से आप शुरू कर दें, वजीफा ना बनाएं, बस अपने दिल की तड़प के साथ इसको पढ़ें कि अल्लाह मेरे घर वालों को वजअलनी वज़ीरा मिन अहली, क्योंकि घर वालों का तआवुन बंदे के हाथों को 2 की जगह 10 कर देता है। नबी सल्लम ने भी तो अपने करीबियों से दावत मांगी थी ना, तो ये दुआ करें। और जो काम हम अपनी कोशिशों से नहीं कर सकते वो इंशाल्लाह दुआओं से करेंगे। और आखिरी बात यही है कि जब भी कहीं दीन की बात करने का मौका मिले, जहाँ भी हो, तो लोगों को इस मौजू की अहमियत का एहसास दिलाएं कि ये बहुत अहम मौजू है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि अल्लाह आपको अपने काम पे चुन ले। अब आपको कोई तबलीगी जमात कहता है तो सारा आंखों पे, कोई आपको जमात इस्लामी कहता है तो सारा आंखों पे, कोई आपको अल्लाह वाले कहता है तो सारा आंखों पे, और क्या बनना चाहते हैं हम? ठीक है, तो नामों में खोए बगैर अल्लाह के दीन को अपनी ज़िंदगी का शार बनाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए, गलतियों की इसलाह फरमाए, और अगर खैर की बात है तो उसमें अल्लाह ताला हिस्सेदार बनाए, और हमें इस दीन को लेकर आगे निकलने वाला बनाए। जो कुरान सीख रहे हैं अब इसको सीनों में लेके बैठ नहीं जाना। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, अभी भी पूछा, कल भी सियालकोट थे, परसों गुजरांवाला थे, कि आप यहाँ कब आके पढ़ाएंगी, या आपको कौन बुलाता है, आप कैसे आते हैं ना। तो लोग ये सोचते हैं कि शायद इसका कोई और तरीका है, तो मैंने उन्हें कहा मुझे आप जब बुलाएंगी तब मैं आऊँगी। आप कैसे बुलाएंगी? जहाँ कुरान की क्लास होती है। एक रमज़ान आपके घर से कुरान का दौर चल गया ना, आप देखिएगा कि आपके लिए खैर का चश्मा खुल जाएगा। ठीक है, तो अब ये आप जितना सोचेंगे इस पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपसे उतने काम लेगा। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम व बिरहमतिका नस्तग़ीस। اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. آمين ثم آمين.